الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں 164 نمبر آیت تک ہم نے کر لیا تھا۔ آیت 165 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَمِن نَاس مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، حالانکہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ یہ انسانوں کی عام عادت ہے کہ جو ان کی اپنی تخلیق ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ بنا لیں، کوئی دیوتا بنا لیں، کوئی، تو وہ ان کو اللہ کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں محبت میں اور اللہ کی محبت چھوڑ دیتے ہیں یا کم از کم کم ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پہلو سے بیان کیا ہے کہ یہ میرا حصہ کھا جاتے ہیں لیکن اپنے دیوتاؤں کا حصہ نہیں کھاتے، وہ پورا پورا ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے مشرکانہ مظاہر ہوتے ہیں اس میں تو کبھی خرابی نہیں کرتے لیکن اللہ کے حق مار لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے لیکن گیارہویں شریف لازمن دے دیں گے مثال کے طور پر۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کو انسانوں کے ہاں ایک بیماری کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں پھر ان کے ساتھ ویسی اتنی ہی محبت کرنے لگ جاتے ہیں جتنی اللہ سے ہونی چاہیے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات یہاں سے یہ نئی فصل شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہارا الہ ہوں اور اکیلا الہ ہوں، اس کے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 163 تھی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اسی بات کو اس کے لیے پھر دلائل دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا مظاہر ہیں جو توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو آگے اب یہ فرمایا کہ اس کے باوجود، ان نشانیوں کے باوجود، ان حقائق کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ تعجب کی بات بھی ہے اور طنز کی بات بھی ہے کہ اس کائنات میں دو خداؤں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے لیکن لوگ پھر بھی دو خداؤں کو ماننے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اور چلیے خدا مان لیا تو شرک کر دیا، لیکن پھر اگلی بات بھی ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی درجے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ، جتنی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں محبت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ تین اجزاء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ محبت کے اندر لگاؤ ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا یہ ہوتا ہے۔ دوسری حمیت ہوتی ہے، یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی برائی نہیں سن سکتے، اس کے بارے میں برے خیالات دل میں نہیں آتے، نہ دوسروں کو بات کرنے دیتے۔ تو محبت کے اندر یہ دوسرا جزو ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے لگاؤ ہوتا ہے، دوسری چیز اس کے لیے حمیت ہوتی ہے، یعنی ہم اس کے لیے غیرت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور تیسری چیز فرما برداری ہوتی ہے۔ یہ محبت کا مکمل تصور ہے اور یہ تینوں جو مل کر محبت کا ایک تصور بناتے ہیں وہ اگر خدا کے ساتھ چلا جائے، خداؤں والی بات ہو جائے تو اس میں تقدس بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ایڈ ہو جاتا ہے جب خدا کا معاملہ زیر بحث آتا ہے، یا انبیاء کا آتا ہے، یا رسولوں کا آتا ہے، یا دیوتاؤں کو آتا ہے، تو اس میں ایک پہلو تقدس کا بھی ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ اب چار چیزوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ عام طور پہ تین چیزوں کا ہوتی ہے لیکن خداؤں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ ہو تو پھر اس کے اندر عقیدت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو ان چاروں پہلوؤں والی محبت وہ اللہ کی بجائے اللہ کے شرکا سے کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پھر ان کی بات ٹالی نہیں جاتی، فرما برداری کرنی ہے نا، ان کے ساتھ غیرت وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی کسی دیوتا کو برا کہہ دے तो जान से मारने पे तैयार हो जाएंगे, गैरत इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है और फरमाबरदारी इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो इसके लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह का हक तो मार जाएंगे, ज़कात तो खा जाएंगे, लेकिन जो देवताओं के लिए कुछ हक रखा हुआ है उसको वो नहीं खाएंगे, वो पूरा पूरा अदा करेंगे। तो हमीयत और गैरत इस शक्ल को इख्तियार कर लेती है, फरमाबरदारी भी इस शक्ल को। तो जितनी अल्लाह के बारे में होना चाहिए उतना इन लोगों के बारे में हो जाता है। तो फरमाया कि जबकि मोमिनीन जो हैं वो अल्लाह के साथ ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, यानी अल्लाह की फरमाबरदारी ज़्यादा करने वाले, अल्लाह के लिए गैरत ज़्यादा रखने वाले, अल्लाह के साथ लगाव ज़्यादा रखने वाले, ठीक है, और अल्लाह के साथ अकीदत ज़्यादा रखने वाले, चार पहलू जो खुदाओं के बारे में मैंने अर्ज़ किया। तो ये चारों के चारों पहलू अल्लाह के लिए ज़्यादा होने चाहिए। तो गोया किसी की बात के मुकाबले में अल्लाह की बात आ जाए तो हमें अल्लाह की बात माननी है, और गैरत का मामला जब हो तो सबसे बढ़कर खुदा के दिफा करना चाहिए, और अगर मसला ये लगाव का हो तो खुदा के साथ लगाव होना चाहिए, अकीदत का मसला हो तो सबसे ज़्यादा बढ़कर अकीदत अल्लाह से होनी चाहिए, क्योंकि उसकी उसकी जो ज़ात है वो हकीकी मानी में मुकद्दस है। बाकी जितनी भी तकदीस है मुकद्दस होने के, जितने भी बाकी मकामात हों या अफराद हों अशखास हों, वो अल्लाह की अता करदा चीज़ें हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनको ज़ाती तौर पर हासिल है। अल्लाह का तकद्दस खुदा को ज़ाती तौर पर हासिल है। तो इसलिए अगर अकीदत किसी के साथ शदीद तर हो सकती है तो वो भी अल्लाह। अब लगाव जो है वो हम बाकी चीज़ें तो कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह के साथ हमीयत भी होती है, बहुत थोड़ी होती है लेकिन होती है, अल्लाह के साथ फरमाबरदारी भी हमारी होती है, अगरचे मैंने बता दिया कि उसमें देवताओं की नाफरमानी नहीं होगी, अल्लाह की हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं लेकिन कम, लेकिन लगाव पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा कम है, हमारा खुदा के साथ लगाव नहीं है, हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को वैसा महसूस नहीं करते जैसा मैं अपनी माँ के साथ महसूस करता था जब वो ज़िंदा थी, या अभी भी करता हूँ कि एक लगाव सा महसूस होता है, एक उस तरह की चीज़ नहीं है। तो खुदा के साथ वो भी पैदा करना चाहिए अपने आप को। तो अब इसमें जो बात कही जा रही है कि इलाह तुम्हारा एक है, लेकिन इन लोगों ने दलाइल ना होने के बावजूद, कोई असबाब ना होने के बावजूद भी अल्लाह के मुकाबले में कुछ शुरका ठहरा लिए, और फिर सिर्फ शुरका नहीं ठहरा लिए, जो गैरत जो मोहब्बत जो लगाव जो फरमाबरदारी खुदा के साथ होनी चाहिए थी उतनी उन लोगों के साथ करने लग गए, जबकि ईमान का तकाजा ये था कि अल्लाह के साथ सबसे बढ़कर ये मामला किया जाए। आगे फरमाया वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौना अल-अज़ाब। तो अब जो पीछे बात इसके अंदर पोशीदा है मोहब्बत में भी और खुदा के साथ शरीक ठहराने में, वो दो तीन बातें हैं जिनको समझना चाहिए, अगली बात से बात जुड़ नहीं पाएगी अगर वो आपके सामने तसव्वुर ना हो। इलाह मानने का मतलब यह है कि हकीकी तौर पर हुक्म वही दे सकता है, मददगार वही है, कल क़यामत वाले दिन उसी से उसी ने बाजपुरस करनी है, कल क़यामत वाले दिन उसी ने बाजपुरस करनी है, वही सज़ा देने का हक रखेगा, जब वो सज़ा देगा तो कोई बचा नहीं सकता। दीन इलाह ने देना है, असल ताकत उसी के पास है, असल मदद उसी की तरफ से आनी है, और फैसला उसी की तरफ से आना है क़यामत वाले दिन। तो अगर अब फैसला ना, इसका जिक्र क्यों अल्लाह ताला को करना यहाँ ज़रूरी हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर जन्नत दोजख कायम होनी है और मेरा इलाह आकर मुझे बचा लेगा तो जान छूट जाएगी, अल्लाह ताला जो मर्ज़ी करते रहें देखते रह जाएंगे, नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, कब एक दूसरा उसी दर्जे का एक इलाह है वो मुझे निकाल कर ले जाएगा। इस तसव्वुर से फिर दीन का जो हकीकी मफहूम है वो ख़त्म हो जाता है, क़यामत के मानी ही ख़त्म हो जाते हैं, कि जब क़यामत वाले दिन दो तीन खुदाओं का मसला होगा, कुछ अपने लोगों को लेकर निकल जाएगा, कुछ अपने लोगों को लेकर निकल जाएगा, तो क़यामत के मानी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इलाह के अंदर ये तीन मानी लाजमी तौर पर शामिल समझने चाहिए। जैसे ही अल्लाह ताला कहें कि मैं अकेला इलाह हूँ, तो उसका एक मतलब यह है कि वो वाक़ियतन अल्लाह एक ही है, कोई और इलाह नहीं है, किसी हस्ती को इलाह वाला तकद्दस इलाह वाला मकाम नहीं दिया जा सकता। दूसरे इसके मानी यह हैं कि दीन सिर्फ़ अल्लाह का हक है, कोई और नहीं दे सकता, किसी फ़लसफ़ी, किसी अकलमंद, किसी दाना को, किसी आलम दीन को, किसी दानश्वर को ये हैसियत हासिल नहीं है कि वो दीन के तर्ज की कोई चीज़ दे सके, दीन के मयार की कोई चीज़ दे सके। ये लाजमी तौर पर वाज़ेह रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इलाह के इख्तियार में है जज़ा और सज़ा, जज़ा और सज़ा इलाह के इख्तियार में है। क़यामत वाले दिन वो जो मालिक यौमिद्दीन का मफहूम है वो सिर्फ़ इलाह का हक है। अब इन तीनों बातों को सामने रखिए और देखिए, फरमाया कि काश जो लोग शिर्क कर रहे हैं वो देख सकते जब उनको अजाब दिया जाएगा, कि कोई भी छुड़ाने नहीं आएगा। तो अब देखिए कि ये मान रहे हैं उनके दीन को, उनके अहकाम को मान रहे हैं और समझते हैं कि दीन वो भी दे सकते हैं और समझते हैं कि क़यामत वाले दिन बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं काश ये देख सकते उस अजाब को कि जब मैं इनको अजाब में डालूंगा तो कोई बचाने नहीं आएगा। क्या वाज़ेह होगा? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, सारी की सारी कुव्वत अल्लाह ही के पास। तो ये लात और उज़्ज़ा और हमारे जितने भी हमने निजात दहिंदा बना रखे हैं, शफाती बना रखे हैं, किसी के पास कुव्वत नहीं होगी। तो उस दिन बात वाज़ेह हो जाएगी कि इलाह सिर्फ एक ही है। तो इसको बयान किया है कि क़यामत वाले दिन जो चीज़ वाज़ेह होनी है वो ये है कि और किसी का इख्तियार वहाँ नहीं होगा, सिर्फ़ अल्लाह का होगा। तो इसलिए इसको दलील के तौर पर अल्लाह ताला ले के आए हैं कि काश ये उस वक्त देख सकते जब इनको अजाब में डाला जाएगा तो इनको पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि इलाह के पास, अगर ये इलाह होते तो इनके पास इख्तियार होता, चूँकि ये इलाह नहीं है तो इसलिए इनके पास इख्तियार नहीं। तो ये वो शफात का भी यहाँ कलाकमा हो जाता है, जो इस तरह की शफात है कि जिनके बारे में अल्लाह दोज़ख का फ़ैसला कर लें उनको भी बचा लेंगे, ये नहीं होगा। और दूसरी बात ये वाज़ेह होगी कि अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, अल्लाह ताला सज़ा देने में बहुत शदीद है, सख्त सज़ाएँ देते हैं अल्लाह ताला। ये जो खुद अल्लाह ताला ने अपना यह तारुफ़ कराया है ये हकीकी तारुफ़ है। हाकिम वक्त सख्त सज़ाएँ देने वाले भी होते हैं, कम सज़ाएँ देने वाले भी होते हैं। तो खुदा को रहमान और रहीम होने के बावजूद वो सख्त सज़ा देने वाला है, क्योंकि जो हकीकी खुदा होता है, हकीकी मुनसिफ होता है, वो नरम सज़ा नहीं देता। हकीकी मुनसिफ होता ही वही है कि जो पूरी पूरी सज़ा दे दे ताकि अदल अपनी आखिरी शक्ल में कायम हो जाए। तो अदल को अपनी आखिरी शक्ल में कायम करने के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाती, इस बात को बयान किया अल्लाह ताला। ये नहीं कि आपने चोरी से एक लहसुन का जवा सा खा लिया था तो अल्लाह ताला ने दो जख्म में डाल दिया, नहीं, ये नहीं। जितनी आपने जुर्म किया है उसकी पूरी पूरी सज़ा, ये है शदीदुल अज़ाब, उसमें कोई नरमी नहीं होगी, वो पूरी सख्ती से नाफिज़ कर दी जाएगी। हाँ, जिसको नरमी हो सकती है अदल के मुताबिक उसके साथ नरमी भी होगी। वह बता चुका हूँ तवाब रहीम की जो आयत नंबर 160 में हमने बात की थी कि जिनके ऊपर रहमत का इस्तेहकाक होगा उनकी तौबा भी कबूल हो जाएगी, उनके साथ नरमी की जाएगी, और जो तौबा करके आएंगे उनके ऊपर रहमत भी हो जाएगी। तो ये खुदा का। लेकिन शदीदुल अज़ाब का मतलब यह है कि ठीक जो नपी तुली बात होनी है वो होकर रहेगी, उसमें फिर कोई नरमी नहीं होगी। तो अगर किसी ने एक साल के लिए दोज़ख में जाना है तो साल के लिए डाल दिया जाएगा, किसी ने हमेशा के लिए जाना है तो हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा, इसमें कोई नरमी नहीं होगी। तो ये शदीदुल अज़ाब का मतलब ये है, वो नहीं कि जुल्म, इसको अल्लाह ताला ने बयान भी किया है कि अल्लाह ताला ज़रा भी जुल्म नहीं करेंगे। तो उसको बयान कर दिए कि शदीदुल अज़ाब का ये मतलब ना ले लिया जाए कि बस जी मूड आया तो छोटी सी बात पर बड़ी सज़ा दे दी, ऐसा नहीं है। हमारी उर्दू में चूँकि शदीद का मफहूम जो है वो यही है, तो इसलिए ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला बड़ी ज़ालिम किस्म की हस्ती हैं, नौज़ बिल्लाह जो दिल में आएगा कर देंगे। नहीं, शदीदुल अज़ाब का मतलब है कि अज़ाब देने में पूरी तरह जो शिद्दत चाहिए होती है वो कर दी जाएगी। अब ये तौहीद के मज़मून के अंदर ये बात, दो बातें मैंने जो अर्ज़ की हैं वो पोशीदा हैं। एक ये कि दीन देने का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह को है, और दूसरा ये कि क़यामत वाले दिन जो फ़ैसला होना है وہ صرف اللہ کا اختیار ہے. اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا, کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا. یہ دو جو دھارے ہیں یا دو مضامین ہیں جو یہاں پر موجود ہیں, اگرچہ بیان نہیں ہوئے لیکن یہ موجود تھے. اس لیے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ٹھہراتے ہیں تو عذاب ساتھ شامل ہو گیا. تو یوں سمجھیے کہ اس کو میں یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ ہر تصور کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا ابھی رمضان آنے والا ہے تو روزے کے ساتھ ایک مشقت جڑی ہوئی ہے, گرمیوں کے روزوں کے ساتھ شدید پیاس جڑی ہوئی ہے. تو جیسے ہی آپ روزے کا تصور لائیں گے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں خود بخود شامل ہو جائیں گی. اگلا جملہ آپ کا بتائے گا کہ آپ کس پہلو سے بات کر رہے ہیں. ابھی روزے آ رہے ہیں تو ذرا کمر کس لیجئے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیے. تو روزے کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ لفظ روزہ میں موجود ہیں, خواہ بولا گیا ہے کہ نہیں بولی گئی وہ بات ہے. تو روزے میں مشقت ہوتی ہے, یار روزے آ رہے ہیں مارے گئے بھائی, اس دفعہ بڑی گرمی میں روزے آ رہے ہیں. تو کیوں یہ مارے گئے جملہ بولا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ پھر اب مشقتیں گرمیوں والی جڑی ہوئی ہیں, بہت شدید پیاس اور یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم لفظ بولیں گے. تو یہاں جیسے ہی الہ بولا ہے تو الہ کے ساتھ شریعت دینے کا اختیار, یعنی دین دینے کا اختیار. دوسرا یہ کہ ماورائے اسباب کام کرنے کی قوت صلاحیت, اور تیسرا یہ کہ عذاب سزا دینے کا حق صرف الہ کو حاصل ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس لیے ہمارے شریعت میں اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں کہ اصل سزا دینے کا حق صرف اللہ کو ہے, انسانوں کو نہیں ہے. دنیا میں بھی جو سزائیں دینی ہیں وہ بھی خدا کی اجازت سے دی جاتی ہیں. خدا نے ہمیں اجازت دی کہ قانون بنا کے ہم, اس لیے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو مقتول ہے اس کا وجالنا لے ولی ہی منصورہ, ہم نے اس کو مدد فراہم کی ہے کہ اس کے قاتل کو سزا دی جائے, ہم نے یہ مدد فراہم کی ہے. تو یہ جو سزاؤں کا جو قانون ہے وہ بھی اسی پر کھڑا ہے کہ دنیا میں جو سزائیں دینی ہے وہ بھی عدل کے مطابق ہونی چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, بس اس سے زیادہ نہیں دیا, قتل نہیں کیا جا سکتا چور کو. تو اب یہ عذاب کو الہ کے ساتھ اس لیے جوڑا, شرک کے ساتھ اس لیے جوڑا کہ یہ ظلم ہے. اب جو لفظ بولا ہے وہ بھی دیکھیے, بڑی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا چناؤ حیرت انگیز ہوتا ہے. ولو یر الذین ظلموا, ظالموں کو سزا ملنی چاہیے نا, لفظ ایسا بول رہا ہے. تو اب ظلم شرک کی نوعیت کا ہو, ظلم دنیا پہ انسانوں کی اوپر ہو, کسی بھی شکل کا ہو, اس کی سزا لازم ملے گی. تو اب الہ, ظلم, سزا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں, الگ الگ نہیں ہیں. لیکن جو کہ قرآن مجید پڑھنے والے ان تعلقات کو سامنے نہیں رکھتے جو دور جدید کے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے کلام بڑا بکھرا بکھرا ہے. نہیں, بکھرا بکھرا نہیں ہے, جڑا ہوا ہے. کیونکہ الہ کے ساتھ یہ تین حق قرآن مجید نے بھی واضح کیے اور عربوں کے ہاں بھی واضح تھے. اب آگے فرمایا, عزت از تبر الزینہ نتبعو من الذین اتبعوا وراب العذاب وتقطعت بهم الاسباب, وہ لوگ جو جن کی پیروی کی گئی, اتبعو جو ہے وہ جن کی پیروی کی گئی, ان لوگوں سے جب برات کر دیں گے جو پیروی کرنے والے ہیں. یعنی لیڈر جب فالوورز کی سے برات کر دیں گے, برات کا مطلب ہے کہ یہ اعلان کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ پہلا مجہول ہے اتبعو, اور دوسرا جو ہے تبعو وہ معروف ہے. تو جن کی پیروی کی گئی وہ جب برات کر دیں گے, ان کی جو ان کے فالوورز ہیں پیروی کرنے والے ہیں, وَرَاءُ العذاب, اور وہ عذاب کو دیکھیں گے, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور ان کے سارے راستے سبیلیں امکانات ختم ہو جائیں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا, کوئی مدد نہیں آئے گی. تو اب یہ اسی کا ذر بات یہ چل رہی ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا. عذاب دینے میں اب اگلی بات یہ ہوئی کہ دو لوگ ہیں, ایک وہ جن کی پیروی ہو رہی ہے, یہ پھر دو طرح کے ہیں, جن کی پیروی ہو رہی ہے پھر یہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں, پیشوا ہوتے ہیں, یا اپنے اپنے مذہب کے بنانے والے ہوتے ہیں, और एक वो हैं जिनको देवता की जगह दे दी जाती है। तो यहाँ पहले हिस्से में दोनों ही मुराद हैं, देवता जो दीन दे रहे हैं या दीन जिनके हवाले से दिया जा रहा है। जब ये दीन देने वाले, मसलन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना लिया बाज़ लोगों ने, तो क़यामत वाले दिन कहेंगे कि मैं, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, मैंने तो नहीं कहा था कि मैं खुदा हूँ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुदा बन के बैठ जाते हैं, वो भी क़यामत वाले दिन कहेंगे जी कि मैं इनकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। ये कुरान ने बयान कर दिया है कि शैतान भी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर देगा, उस दिन बरात कर देंगे, झूठ बोलेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच बरात करेंगे, लेकिन ये जो खुदा बनने की कोशिश करने वाले इंसान हैं ये झूठी बरात करेंगे, लेकिन कर देंगे क्योंकि सामने आ गया सब कुछ, हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। तो देवता और पेशवा दोनों इसके अंदर शामिल हैं। तो देवता भी और पेशवा भी क़यामत वाले दिन इनकार कर देंगे, जी हमारी इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, हम इनसे ऐलान बरात करते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि ये अज़ाब को देख लेंगे, वराउबुल अज़ाब। अज़ाब जब सामने आ जाएगा तो हकीकत खुल जाएगी। व तकत्तात बेहुमल असबाब, इसके दो तर्जमे मुमकिन हैं। एक है कि इनके दरमियान इख्तलाफ हो जाएगा, यानी फूट पड़ जाएगी। यहाँ तो जत्थे बने हुए थे, ये फ़लाना ग्रुप है जी, फ़लाना देवता के मानने वाले हैं, बड़े इकट्ठे रहते थे, लेकिन जैसे ही वो बरात का ऐलान करेंगे तो फूट पड़ जाएगी। तो असबाब का मतलब रिश्ता ताल्लुक मुराद दिया गया, तकत्तात बेहुमल असबाब, इस मानी में आता है, कोई शुबा नहीं इसमें। मैं जो मानी ले रहा हूँ वो ये है कि सारे असबाब ख़त्म हो जाएंगे, ज़राए रास्ते दोज़ख से अज़ाब से निकलने के रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई इनके हाथ में चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि अल्लाह ताला की कुव्वत, अल्लाह का फ़ैसला है ना, अल्लाह का फ़ैसला जब सादिर हो जाएगा, इनको अज़ाब में डाल दिया जाएगा, तो कोई असबाब काम नहीं आएंगे, ना किसी की देवता होना काम आएगा, ना किसी को उसका फॉलोअर होना काम आएगा, ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे। तो अब जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो हक बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि अब किसी और का इख्तियार नहीं है, सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। तो जब अल्लाह का इख्तियार है तो तौहीद बिल्कुल इन पर वाज़े हो जाएगी। अब इस गुस्से में आकर जब जैसे ये बरात का ऐलान होगा तो जो पैरोकार हैं वो कहेंगे कि लउ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, कि जो फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे कि काश हमें एक दफ़ा वापसी का मौका मिल जाए तो फिर दुनिया में हम इनसे वैसे ही बरात का इजहार करेंगे जैसे इन्होंने हमारे साथ अभी किया है, कि हम इनकी बात को, इनका साथ देने से इनकार कर देंगे। तो बरात का ऐलान कर देंगे, यानी हमारी कोई इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, हम बरी, ये भी बरी। तो वो कहते हैं कि हम दुनिया में अगर हमें एक मौका मिल जाए तो हम भी ये बरात का ऐलान कर देंगे। अब ये देखिए कि कहानी क्या बनी है। कहानी ये बनी है कि एक शख्स एक आदमी की पैरवी में, एक पेशवा की पैरवी में या किसी देवता की पैरवी में सारी ज़िंदगी गुजार के आया है। उसने उसके लिए पैसे भी खर्च किए होंगे, जद्दोजहद भी की होगी, अमाल भी किए होंगे, कोई सदका खैरात भी किया होगा, तो हर तरह से वो अपने इस दीनी तसव्वुर के साथ वो मुसलसल लगा रहा होगा कि मामला जो हैं वो चलते रहें। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा कि सारे के सारे अमाल जाया चले जाएंगे। यानी जितने, मिसाल के तौर पर एक काली माता को पूजने वाला आदमी क़यामत वाले दिन जाएगा तो काली माता तो होगी नहीं वहाँ पर, और अगर कोई होगी भी तो वो बरात का ऐलान कर देगी कि भाई मैं तो ना थी, ना खुदा थी, ना मैंने खुदा होने का दावा किया। तो अब जो काली माता के नाम पर जो कुछ किया गया होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो कहा कि अगर ये लोग जो हैं कल क़यामत वाले दिन जब आएंगे और ये बरात का ऐलान हो जाएगा तो इनके अमाल में इनको हसद बना के दिखाऊंगा। मुसलमानों की ज़िंदगी में मिसाल देखें कि एक आदमी एक पीर साहब की खातिर या किसी बुज़ुर्ग की खातिर सारी ज़िंदगी लगा रहा, उसके मज़ार पे चक्कर लगाता रहा, वहाँ नज़र न्याज पेश करता रहा, अपने ख्याल से तो वो नेकी कर रहा, लेकिन कल क़यामत वाले दिन उसका कोई वज़न नहीं होगा। इस तरह हमारे यहाँ बहुत सारी रसूम व आदाब हैं, ग्यारहवीं शरीफ है, कुंडे शरीफ हैं, और वो समझते हैं कि ये बड़े नेकी के काम हैं, करंट का कोई वजन नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना उसका हुक्म दिया ना वो अल्लाह के लिए किए गए। तो इस तरह से ये जो जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं जो मुशरिकाना तसव्वुरात से पैदा हों या इस तसव्वुर से पैदा हों कि उसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दिया गया है या अल्लाह के अलावा कहीं से हुक्म आ गया है, क्योंकि दीन देने का इख्तियार अल्लाह का है। जो मैं इलाह के लफ्ज़ के तहत वाज़े करता चला आ रहा हूँ वो यहाँ भी पेश नज़र है कि अल्लाह ताला क्यों अमल ज़ाया कर देंगे, क्योंकि वो किसी और इलाह ने दिए हैं जो असल में इलाह है ही नहीं है। तो इसलिए वो अल्लाह का दीन नहीं है, अल्लाह का दीन नहीं है तो उसके कोई मानी नहीं है। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और इनमें से कोई भी कभी भी आग में से निकल नहीं सकेगा। तो यहाँ पर भी जो खारिजीन मिनन नार है, ये मतलब ये नहीं है कि दोजख दायमी है या नहीं है, मतलब है कि कोई निकालने वाला ही नहीं होगा, कोई देवता इनके काम नहीं आएगा, कोई बुज़ुर्ग इनके काम नहीं आएगा कि जिनको अल्लाह ने दोजख में डाल दिया उनको निकाल सके। तो इस सारी बात को दलील के तौर पर पेश किया गया है कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अल्लाह की ज़ात ही सिर्फ इलाह है और कोई इलाह नहीं है। और क़यामत वाले दिन ये मंज़र जो है ये अल्लाह ताला ने सुनाकर हमें बताया कि ये मामला तुम्हारे साथ पेश आने वाला है। तो उससे पहले ही बात को समझ जाओ कि खुदा कौन है, एक ही इलाह को मानो और उसी के दीन की पैरवी करो, बाकी सब छोड़ दो। बाकियों का दीन, बाकियों का वजूद, बाकियों की ज़ात तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तो ये इस पूरे कलाम का मुद्दा ये था। अब जैसे मैंने बताया कि इलाह के तसव्वुर के साथ दीन देने का तसव्वुर मौजूद है, असबाब के बग़ैर काम करने का तसव्वुर, ये इलाह की असल मानी है। और दूसरा ये कि सज़ा वही दे सकता है। तो सज़ा की बात अल्लाह ताला ने बयान कर दी कि क़यामत वाले दिन सज़ा देने का हक चुके सिर्फ़ अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला ने सज़ा दे देनी है, कोई बचाने वाला नहीं होगा, ना कोई निकाल सकेगा ना कोई बचा सकेगा। अब दूसरी रह गई शरीयत के पहलू से, तो अब वो बातें शरीयत के पहलू से शुरू हो गई हैं। तो शरीयत मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ये तमहीद इस बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल भेजा बनाकर भेजा गया है ताकि दीन सही कर दिया जाए। सही दीन किसको देने का हक है? सिर्फ इलाह को देने का हक है। यानी मैं अपनी बात को सही दीन नहीं कह सकता, खा कितना ही बड़ा महा आदमी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन अल्लाह की बात ही सही दीन है। तो सही दीन करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने भेजा है? हकीकी इलाह ने भेजा है, जो सिर्फ़ एक ही है। अब उसी की बात माननी पड़ेगी। चुनाँचे अब आगाज़ फरमाया कि या अय्युहन नास, ऐ लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुवुन मुबीन। ऐ ईमान वालो, ज़मीन में से उन चीज़ों को खाओ जो हलाल और तय्यब है। यह शरीयत शुरू हो गई कि जो अल्लाह ताला ने देने के लिए, ये शरीयत की शुरू हो रही, सही करने की शुरू हो गई। यानी शरीयत तो पहले से चली आ रही है इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन जो खराबियां पैदा कर दी हुई थी उनकी इस्लाह का अमल शुरू हुआ। तो इस्लाह के लिए फरमाया कि ज़मीन में जो कुछ हलाल और तय्यब है वो खाओगे। ये असूल बता दिया कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल खाने को जायज़ करार दी हैं वो हलाल और तय्यब हैं। हलाल का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से नाजायज़ नहीं है, और तय्यब का मतलब होता है कि वो पाकीज़ा है। समझ, दोनों का फ़र्क है। हलाल का मतलब है कि अल्लाह की शरीयत में वो नाजायज़ नहीं है, और तय्यब का मतलब होता है पाकीज़ा हैं, साफ़ सुथरी हैं, उनके अंदर बदबू नहीं है, उनके अंदर गंदगी नहीं है, कराहत वाली चीज़ें नहीं हैं। तो ये अल्लाह के दीन की खूबियों में से एक खूबी भी सामने आ गई और हलाल व तय्यब के शरीयत भी सामने आ गई। क्या लोगों, यहाँ पर देखिए या अय्युहल्लज़ीन आमनू नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया, क्योंकि कौन बात कर रहा है? मुसलमानों का खुदा बात नहीं कर रहा है, खालिक कायनात बात कर रहा है, सब इंसानों का खुदा बात कर रहा है। तो ऐ लोगों, ज़मीन में जो हलाल और तय्यब है उसको खाओ, सब के लिए ये हुक्म है, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, कि इंसान की फितरत इसी तरह से बनाई गई है, वो गंदी चीज़ें नहीं खाता है। तो खुदा का हुक्म भी यही है कि हलाल और तय्यब खाओ। तो एलोगो जो भी ज़मीन में मौजूद है उसके अंदर से हलाल और तैयब खाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। अब देखिए कि पीछे जितनी भी बातें हैं जो गैरुल्लाह ने बनाई हैं उन सबको शैतान की पैरवी करार दे दिया कि अल्लाह के अलावा जो कुछ भी दीन तुम्हें मालूम है ये तुमने खुद तश्कील कर लिया है या तुम्हें किसी ने सिखाया है, अल्लाह के दीन के अलावा वो सब के सब शैतानी पैरवी, वो शैतान की पैरवी, इसलिए उससे बच के रहो। शैतान की पैरवी इसलिए करार दिया गया है कि अरबों के यहाँ तागूत और शैतान उन लोगों के लिए भी बोला जाता है जो गैरुल्लाह की जगह अल्लाह की जगह बिठा दिए जाते हैं। यानी मैंने कहा जी कि लात खुदा है नौज़ बिल्ला, तो अब लात शैतान हो जाएगा, क्योंकि ये सरकशी की वो जगह है कि जहाँ पर मसलन हम किसी बाप के मुकाबले में बेटा खड़ा हो जाए तो कहेंगे ये शैतान है, इस तरह की बात है, क्योंकि वो उसने बाप के आगे खड़ा हो गया है, बाप की जगह लेने की कोशिश की है तो शैतनत कर रहा है। तो शैतान के अंदर जो सरकशी के मानी है उस वजह से उन तमाम लोगों को शैतान या तागूत कह दिया जाता है जो खुदा की जगह बैठने की कोशिश करें, खुदा बनने की कोशिश करें। दूसरी बात इसमें यह है कि वो गुमराह करता है, इसलिए भी उसको शैतान कहा गया। पूरे कुरान मजीद में देखिए कि किस्सा आदम में जब वो सजदे का इनकार कर रहा है तो अल्लाह ताला इबलीस कह रहे हैं उसको, शैतान नहीं कह रहे। पूरे जितने भी वाक्यात तीन चार जगह पे आए हैं, तो अब जो इनकार करने का है वो इबलीस का नाम है। जैसे ही गुमराह करने की बात आती है हज़रत आदम को तो शैतान का लफ्ज़, वहाँ इबलीस नहीं बोला गया। जिससे पता चलता है कि शैतान दरअसल दो वस्फ वाली शख्सियत को कहेंगे। एक वो शख्स जो खुदा की जगह बैठने की कोशिश करे, खुद इलाह बनने की कोशिश करे, वो शैतान होगा। और दूसरा वो शैतान होगा जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करे, अखलाकियात से हटाने की कोशिश करे, सही अकीदे से हटाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर अब शरीयत देने वाला जो गलत शरीयत दे रहा है खुदा की, वो दोनों काम कर रहा होता है। खुदा के मुकाबले में जो नई शरीयत दे रहा होता है वो दोनों काम कर रहा होता है। एक ये कि वो खुदा की पोजीशन ले रहा है शरीयत देने की, कोई इलाह बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बता चुका हूँ कि इलाह दीन देने का हक सिर्फ इलाह को हासिल है, तो दीन देने वाला जो भी होगा वो इलाह बनने की कोशिश कर रहा होगा, तो इस मानी में भी शैतान हुआ। और सीधे रास्ते से हटा रहा है तो इस मानी में भी शैतान हुआ। तो इसलिए लफ्ज़ बिल्कुल ठीक अपने पूरे मफहूम में यहाँ आ गया है कि वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुवुन मुबीन, वो तुम्हारा एलानिया दुश्मन है। मुबीन का मैं तर्जमा एलानिया कर रहा हूँ खुले की बजाय, वो भी ठीक है, गलत तर्जमा नहीं है, लेकिन एक शेड को बीच में बयान करने के लिए ज़रूरी है कि पहलू वाजे हो, क्योंकि कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं कि वो छुप छुपा के दुश्मनी करते हैं, लेकिन इबलीस वो या शैतान वो दुश्मन है कि जिसने रोज़े अज़ल ऐलान किया था कि मैं इसके दाएं बाएं से हमला करूंगा, इसको तौहीद के रास्ते से हटाऊंगा, इसको जानवरों के कान काट के शिर्क करने का सुझाऊंगा, उसने ऐलान किया था। अब अगरचे हमें नज़र नहीं आता लेकिन है वो ऐलानिया दुश्मन। तो खुला दुश्मन इसलिए मैं नहीं तर्जमा कर रहा कि खुला दुश्मन नज़र आना चाहिए, ऐलानिया का मतलब है कि छुप छुप गया हूँ लेकिन हूँ मैं दुश्मन, ऐलान करके कोई चालबाजी से दुश्मन नहीं बनाऊंगा बल्कि वो ऐलानिया दुश्मन है। तो अब ये शरीयत जो इन इलाहुकुम इलाहुन वाहिद से जो मजमून शुरू हुआ उसमें तीन बातें हैं, दो बातें चल रही हैं। एक बात इलाह के लफ्ज़ के साथ ही मौजूद है कि वो हस्ती जो बग़ैर असबाब के, बग़ैर किसी कुव्वत यानी मादी असबाब के सब काम कर सकती हो। दूसरा ये कि उसको शरीयत देने का हक सिर्फ उसी को हासिल है, दीन देने का हक सिर्फ उसी को हासिल है। तीसरा ये कि क़यामत वाले दिन सजा व जजा का हक भी उसी को हासिल है। ये तीन चीज़ें इलाह के लफ्ज़ बोलते ही साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब दो बातों को लेकर अल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं। एक ये कि अजाब जो है वो मैंने ही देना है, क़यामत वाले दिन ये बिल्कुल सामने हो जाएगी बात कि अल्लाह ताला ने सजा दी, कोई बचाने वाला नहीं आ सका। और दूसरी बात ये कि शरीयत देने का हक अल्लाह को है, तब अल्लाह ताला ने शरीयत देनी शुरू कर दी है दुरुस्त करने के लिए, जो यहूद नसारा ने और कुरैश मक्का ने शरीयत ख़राब कर रखी थी उसको दुरुस्त करने का अमल यहाँ से शुरू कर दिया है। पहला एक काम हो चुका है किबले की दुरुस्ती का, उसके बाद अब ये दूसरा गोया समझ लीजिए कि हुक्म है। और इसमें हलाल और तैयब वो चीज़ें नहीं खाई जाएंगी जो हलाल और तैयब नहीं है, जबकि बुतों की वजह से, देवताओं की वजह से या मुशरिकाना मज़ाहिब की वजह से नापाक चीज़ें भी खाई जाती हैं जिनके अंदर नापाकी कई तरह की दाखिल हो जाती है, वो अकीदे की भी होती है और वो चीज़ भी नापाक होती है, यानी मुर्दार भी खा लिया जाएगा अगर देवता की तरफ से आ गया है, तो इस तरह की चीज़ें और मुशरिकाना जो नजासत है वो भी उसको लग जाती हैं। तो नजासतें जो हैं वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा बात करेंगे कि किस किस किस्म की हैं और तैयब का मतलब क्या होता है। अब वक्त हो गया है।